ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति और सफल चंद्रयान मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की वैज्ञानिक और समूह निदेशक आरती सरकार और आकाशवाणी संवाददाता अपर्णा खुंट।
23 अगस्त 2023 की वर्ष शाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बसे सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन था। चंद्रमा की दक्षिण सतह पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग और भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक पल। इसरो की यही उपलब्धि को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। तो भारत का यह अंतरिक्ष सफर और चंद्रयान मिशन के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है अहमदाबाद इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में वैज्ञानिक और ग्रुप डायरेक्टर के रूप में कार्यरत आरती सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो हम शुरुआत इसी से करते हैं कि आप आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, तो ये पूरे सफर को हम किस तरह से देख रहे हैं?
जैसे आपने बोला, एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट था और हर भारतवासी को बहुत गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारा देश वो पहला देश बना है जो मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। तो ये सच में हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसा कि आपने बोला, उस दिन तो पूरे भारत में इतना बड़ा जश्न मनाया गया था और शायद ही कोई बचा होगा जिसने टीवी पे या यूट्यूब पे ये कार्यक्रम लाइव ना देखा हो।
तो इसी सफर के बारे में ही आप हमारे श्रोताओं का अवगत कीजिए, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आज किस मुकाम पे हम पहुंचे हैं और ऐसे कौन से वो मील के पत्थर है जिनकी वजह से भारत आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विश्व में ताकत बनने जा रहा है।
जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ स्पेस बोला जाता है, स्पेस साइंस, तो शुरुआत उन्होंने ही करी थी। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 से, इसकी शुरुआत हुई थी और ये उनकी ड्रीम थी कि जो हम स्पेस साइंस है वो हम कॉमन मैन के लिए तो यूज करें ही करें, बट जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उसमें भी हम एट पावर रहें दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे देशों के साथ। तो हम अपने भारतवासियों के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है एक डेवलपिंग नेशन है, तो हमको उनके लिए स्पेस को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, वो भी करना है और साथ साथ दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के, मैं कहना चाहूंगी आगे निकल करके और हर चीज में प्रथम बनना होगा। उनका सपना था, मैं बोलूंगी जो सपना उन्होंने शुरू किया देखना 1962 से, वो हमने 23 अगस्त 2023 को पूरा कर दिया।
हर एक मिशन का एक वजूद होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। तो जहां तक चंद्रयान की बात है, जो पहला, दूसरा और तीसरा, क्या वजूद था, क्या मकसद था और हम पहले दो मिशन से हम क्या सीखे जिससे हम तीसरा मिशन जो है सक्सेसफुली पूरा कर पाए?
इसमें मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगी कि जो चंद्रयान या चांद पे जो मिशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो पहले आप समझिए कि फ्लाई बाय मिशन होते हैं कि वहां से चांद के पास से निकल जाएं। तो शुरुआत चांद पे जाने की किसी भी देश की ऐसे ही शुरू हुई थी कि उसके पास से निकल के चले गए। तो वो सबसे पहला जो देश था वो सोवियत यूनियन था। जब उसने इमेजेस भेजी तो वो पहली बार ऐसी इमेजेस थी कि जो चांद के पीछे की इमेजेस है जो हमने आज तक नहीं देखा। जैसे हम चांद को देखते हैं तो हम हमेशा उसका एक सरफेस ही, एक फेस ही देखते हैं, पीछे वाले फेस में क्या है क्या नहीं वो किसी को नहीं पता था तब तक। और दूसरी टाइप के जो मिशन होते हैं वो चांद के पास जा करके उसकी सतह के उसमें ऑर्बिट करते हैं और वहां से उनमें जो यंत्र लगे होते हैं वो चांद की तस्वीरें लेते हैं, उसके एटमोसफियर के बारे में, उसके सरफेस के बारे में और मिनरल्स क्या क्या वहां है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इन मिशन्स में ऐसे भी मिशन्स होते हैं जिसमें से एक भाग होता है जो वो क्रैश लैंड करवाते हैं मून पे। तो ऐसे ही हमारा चंद्रयान 1 मिशन था जो कि 2008 में शुरू हुआ। अब ये एक तरह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हम लोग जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल के गए, तो इसलिए ये हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और पहली बार में अर्थ की ग्रेविटी से तो निकले ही निकले, उसके बाद हमको चांद की ग्रेविटी ने कैप्चर करा, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक यंत्र लगा था जिसको बोलते हैं मून इम्पैक्ट प्रोब, तो वो हमने वहां से क्रैश लैंड कराया। तो समझिए हम 2008 में ही चंद्रमा की सतह पे पहुंच गए। अब ये जो यंत्र था इसने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि ये जब नीचे जा रहा था उसकी सतह पे, तब उसने बहुत सारे चित्र लिए, लेटका गया चित्र और उसके एटमॉस्फेयर पे, उसी से पता चला कि उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें पानी मौजूद है। और एक बार जब उसने इम्पैक्ट किया, उसके इम्पैक्ट से जो मट्टी ऊपर उड़ी वो एनालाइज करा हमारे चंद्रयान वन में, ऑर्बिटर में एक था एनक्यूब करके नासा का कैमरा था, तो उसने उस मिट्टी को जब एनालाइज किया तो तब भी पता चला कि उसमें पानी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मतलब इतने सारे आपके मून मिशन हुए हैं अलग अलग देशों के, बट चंद्रयान वन ने ही कंफर्म किया कि उसके एटमॉस्फेयर में भी और उसकी मिट्टी में भी पानी है। जहाँ पे इम्पैक्ट लैंडिंग हुई थी हमारी वो साउथ पोल के पास ही हुई थी, एक शैकल्टन क्रेटर करके जगह है जिसको फिर नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मिशन रहा था। तो इसके बाद आया चंद्रयान टू। चंद्रयान टू का पूरा हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हम जाके वहां सॉफ्ट लैंडिंग करें। तो सॉफ्ट लैंडिंग ऐसे तो हम लोगों ने, आप सोच सकते हो कि साउथ पोल क्यों चुना। अब इक्वेटर का जो जमीन है, सतह है, वो काफी समतल है, बट यहाँ का जो साउथ पोल है उसका जो टेरेन है, जो जमीन है, उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स और बोल्डर्स हैं, तो वहां उतर पाना बहुत एक जटिल कार्य था। तो उसको हम लोगों ने एक चैलेंज की तरह लिया और हम लोगों ने करा, बट उसमें एक ऑर्बिटर भी था, लैंडर विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान करके रोवर था, क्योंकि लैंडर अपने आप में बहुत भारी होता है, तो एक बार जब वो सतह पे लैंड कर जाता है तो वो मूव नहीं कर सकता है, इधर उधर जाने के लिए और साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसमें एक छोटा रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था, और उसमें एक ऑर्बिटर था जो मून है उसके तरह चक्कर काट रहा था और वहां के बहुत हाई रेजोल्यूशन बहुत इमेजेस ले रहा था। तो उन इमेजेस से हमको जो चंद्र की सतह के बारे में पता चल रहा था कि किस तरह की सतह है और हम लोगों को कहाँ लैंड करना चाहिए। तो मैं बोलूंगी इसकी भी बहुत बड़ी एक भूमिका रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारा मिशन रहा था, जस्ट जब हम मून की सतह से अराउंड 2 किलोमीटर ऊपर थे तब थोड़ा सॉफ्टवेयर ग्लिच जिसको बोलते हैं ना, कुछ उसमें प्रॉब्लम आई थी और उसमें 5 थ्रस्टर्स थे तो उसमें से एक मैलफंक्शन कर गया जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई। बट उसका आप समझिए एक पार्ट जो है ऑर्बिटर वो आज तक कार्यरत है।
तो चंद्रयान 3 की जब हम बात करते हैं तो इसकी सफलता को आप कैसे देखते हो?
अब आप देखिए चंद्रयान 3 में हमने कोई भी एरर का स्कोप ही नहीं रखा था। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि 6:04 पे ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो सॉफ्ट लैंडिंग करी। उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी, आपका सॉफ्टवेयर जो था उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए और इंजन में हमारे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए। हमने यहाँ धरती पे ही उस तरह की सतह बनाई जैसे चंद्रमा पे है, हमने आर्टिफिशियल क्रेटर्स बनाए, हमने अपने कैमरा, जैसे आपको पता है कि आपके हाथ में अगर मोबाइल होता है और वो अगर हिल रहा होता है तो आपकी इमेजेस कैसी डिफोकस्ड और हिली हुई आती है, बट जब हमारा ये लैंड कर रहा है उस समय हमको चित्र भी लेना है, बट इंजन तो ऑन है, इंजन से वाइब्रेशन आएंगे, बट हमको अपना कैमरा ऐसा बनाना है कि उस वाइब्रेशन में भी वो अच्छी तस्वीर ले सके। तो ये सब चीजें बहुत हम लोगों ने क्रेन टेस्ट करे, एक्सटेंसिव हम लोगों ने टेस्टिंग करी और हमने ऐसा कुछ स्कोप ही नहीं रखा एरर का। और हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था उसने हमको जो इमेजेस दी, वो इमेजेस, वो जो पूरा मैप था वो सब हमारे लैंडर में ऑलरेडी स्टोर्ड था। तो जब हमारे लैंडर में इसके कैमरा जब इमेज ले रहे थे वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखते थे कि वो सही लोकेशन पे हैं या नहीं है। तो आपने देखा तो इसमें और इसमें फ्यूल भी इस बार ज्यादा रखा था, सो डेट वो थोड़ी जगह एक जगह स्थिर होकर के इमेज लेकर के और उस चीज का मुआयना करके असेसमेंट लेके ये जगह अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो ये ठीक जगह है मेरी लैंडिंग के लिए या नहीं, वो इमेज से वो एसेस करके वो थोड़ी दूर मूव करेगा या दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस सब चीज के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। इसीलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बार कि एकदम हमारी लैंडिंग में कोई एरर नहीं होगा और जैसे आपने देखा एकदम सटीक लैंडिंग हुई थी।
अब सभी के जहन में एक सवाल अक्सर आता है कि चंद्रयान 3 के बाद क्या आगे का प्लान है इसरो का, और जहां तक मून की बात है क्या हमारी सोच है, मतलब क्या विजन है आगे इस चीज को
देखने? जैसे आपने पूछा क्या प्लान है, तो हमारे सच में बहुत बड़े बड़े प्लान है, बट एक बात हमको समझना होगा कि हम क्यों सेटलमेंट करना चाहते हैं चांद पे, हम उसको एक बेस बनाना चाहते हैं अगर हमको फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स पे जाना है, जैसे अगर हमको मार्स पे जाना है तो हम उसको एज अ बेस बनाना चाहते हैं। अब जो चांद पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 है, तो वहां से अगर हम कुछ भी लॉन्च करेंगे तो वो हमको इजियर पड़ेगा। दूसरा, वहां एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो फिर वो हमको होगा अब तो उसमें भी हमको लॉन्च करने में मदद मिलेगी। बट आप जब सेटलमेंट वहां करेंगे तो हमको पता रहना चाहिए पहले से कि वहां क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा चंद्रयान 4 का मिशन जो जाएगा वो हमारा सैंपल रिटर्न मिशन है, वो वहां जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर के आएगा, फिर हम उसमें अध्ययन करेंगे कि भाई उसमें क्या मौजूद है, कौन से मिनरल हैं, हमको जब हम वहां पे सेटलमेंट करेंगे इससे क्या बेनिफिट मिल पाएंगे। और इसको करने के लिए भी जो हमारा एक स्पेडेक्स करके मिशन है, क्योंकि आपने देखा कि एक बार वो लैंड कर गया, अब हमको दूसरा चीज क्या है कि उसको उठा के फिर ऊपर ले जाना है और उसको वापस डॉक कराना है और उसको वापस अर्थ पे लेके आना है, तो उसके लिए एक हमारा मिशन प्लान है स्पेडेक्स करके जो ये सारे एक्सपेरिमेंट करेगा। दूसरा, हम एक भारतीय स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहते हैं, वो भी हम कुछ ही वर्षों में 5 वर्ष के अंदर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे प्रधानमंत्री का भी सपना है कि 2040 तक मून पे चले जाना चाहिए इंसान, तो उसके लिए गगनयान भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन हो जाता है
कि हमें पूछने ही वाली,
क्योंकि हमको चांद पे लेके जाना है, छोड़ के नहीं आना है, हम उसको वापस भी लेके आएंगे, वो हमारे लिए उसके लिए गगनयान की सफलता भी बहुत मायने रखती है। तो ये सारे मिशन हमारे ऐसे प्लान्ड है कि 2040 तक हमारा भारत का नागरिक मून की सतह पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे अभी आपको पता है हमने आदित्य L1 भी लॉन्च किया है, तो ये लैग्रांजियन पॉइंट पे है, तो लैग्रांजियन पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत स्टेबल पॉइंट होते हैं, जहां पे अपना सन का और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ पे बने रहने के लिए हमको ज्यादा फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये जो हमारा आदित्य L1 है ये हमारे सन के कोरोना का स्टडीज करेगा, तो ऐसे ही हमारा मिशन है। एक नेक्स्ट जो मिशन हमारा जाएगा वो है मार्स लैंडर मिशन। जैसे आपको पता है कि हमारा जो पहला मिशन रहा है मार्स का, तो हम पहला देश ऐसा था जो पहली बार में वहां जाकर के पहुंच गए थे, और जो हमारा बजट था वो भी बहुत कम था दूसरे देशों के हिसाब से। जो अब हमारा दूसरा मिशन है वो है हमारा लैंडर मिशन, तो हम भी जाकर के मार्स पे लैंड करेंगे, उसके लिए हम तरह तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्लान कर रहे हैं। इसके बाद एक हमारा मिशन है जो वीनस पे जाएगा, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। हमारा गगनयान का मिशन है जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मिशन है कि हम इंसान को स्पेस में भेजेंगे और हम उसको वापस लेके आएंगे, तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण जो मिशन है वो सब प्लान्ड है।
जी, आपने हमारे साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति और सफल चंद्रयान मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की वैज्ञानिक और समूह निदेशक आरती सरकार और आकाशवाणी संवाददाता अपर्णा खुंट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।